पारा नंबर 12, 12 और आयात उम्मा, यानी उम्मत लफ्ज जिसके अंदर भी आता है या उस रूट से जो आयात शुरू होती हैं, उसमें सबसे पहले सूरत हूद की आयत नंबर 8 है, वलैन अखरना हुमुल अजाब इला उम्मत मादूदा। और अगर एक मुद्दत मुईन तक हम इनसे अजाब को रोक भी लेते, लयकूलुन्ना, तो अलबत्ता वो कहते कौन सी चीज इस अजाब को रोके हुए है, देखो जिस रोज वो इन पर वाकई होगा फिर टलने का नहीं, और जिस चीज के साथ ये मजाक करते थे वो इनको घेर लेगी। क्या पता चला कि अल्लाह ताला के अजाब उम्मतों पर आने के लिए मुंतजिर होते हैं और अल्लाह ताला उसको रोक लेते हैं। अगर लोग उस अजाब से बचने की कोशिश नहीं करते, तौबा नहीं करते, तो अल्लाह ताला के आए हुए अजाब को कोई रोक नहीं सकता। तो मुझे और आपको इसमें खौफ महसूस करना है कि कहीं उम्मत मुस्लिमा की पकड़ के फैसले भी ना हुए हों और हम फिर उसके बाद तौबा भी करेंगे तो बात नहीं बनेगी। अगली आयत सूरत हूद की आयत नंबर 17-17 है, अफमन कान अला बैजिनतिम मिर रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिन्हु मिन क़ब्लिही किताबु मूसा इमामं व रहमा, भला जो लोग अपने परवरदिगार की तरफ से रोशन दलील रखते हों और इनके साथ एक आसमानी गवाह भी इसकी जानिब से हो, और इससे पहले मूसा की किताब जो पेशवा और रहमत है, तो क्या वो कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे? यही लोग इस पर ईमान लाते हैं, और जो कोई और फिरकों में से इससे मुनकर हो तो इसका ठिकाना आग है। तो तुम इस कुरान से शक में ना होना, ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। इसमें बहुत बड़ी बड़ी खबरें जिसमें जो इस वक्त बात है वो क्या, किताब मूसा इमाम व रहमा। यहाँ आप देख रहे हैं कि लफ्ज इमाम गुजरा, लफ्ज वही है उम्मत, तो इमाम और उम्मत और उम ये सब एक है कि पहले दौर में तौरात अब लोगों की इमाम थी, और इमाम वो होता है जिसको फॉलो किया जाए। आज के दौर की किताब मुसलमानों के पास है, दुआ कीजिए कि आज मैं और आप इसको इमाम बना लें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी खुशखबरी है कि मन जालहु इमामन, जिसने इस कुरान को इमाम बना लिया ये किताब उसको जन्नत में ले जाएगी, और जिसने इसको अपनी पुश्त के पीछे डाल दिया तो ये उसको हांक कर जहन्नुम में ले जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें किताब को अपना इमाम बनाने की तौफीक अता फरमाए। अगली आयत सूरत हूद की आयत नंबर 48 है, قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم। हुक्म हुआ कि नूह हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारे साथ की जमातों पर नाजिल की गई हैं उतर आओ, और कुछ और जमातें भी होंगी जिनको हम दुनिया के फवायद से महफूज करेंगे, फिर इनको हमारी तरफ से अजाब अलीम मिलेगा। क्या पता चला इसमें कि अल्लाह ताला ने दो दफा बात की, उमम लफ्ज ना उम्मतुन की जमा है और उममुन दोबारा उसी लफ्ज में आया, इसमें हजरत नूह अलैहि सलाम के कश्ती के पार लगने की बात है और उन बरकतों की जो उस कौम पे उतरी। मेरे और आपके लिए इसमें एक बहुत गहरा सबक है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दुनिया में से 60-70 लोगों को क्यों बचाया तूफान नूह में से, क्योंकि वो अल्लाह की बात मानते थे, अल्लाह को भी मानते थे अल्लाह की भी मानते थे। तो आज हमारा ईमान होना चाहिए कि अगर हम अल्लाह सुबहाना तला की बात मानेंगे एक उम्मत होने के नाते, तो दुनिया में जो भी मुश्किलात आए किसी पे कुछ भी होगा अल्लाह सुब्हान तआला हमें उसमें बचा लेंगे, और अल्लाह ताला ऐसा ही करे। अगली आयत आयत 18 है सूरत हूद, वलौ शा रब्बुक लजअलन नास उम्मतन वाहिदा वला यज़ालून मुख्तलिफीन, और अगर आपका रब चाहता तो तमाम लोगों को एक ही जमात कर देता, लेकिन वो तो हमेशा ही इख्तलाफ करते रहेंगे। क्या पता चला कि सारी दुनिया के लोग तौहीद पे और हक पे जमा नहीं होंगे, लेकिन कोशिश करते रहेंगे वो लोग जो हक पर हैं, और एक वक्त आएगा कि जिनके अंदर जरा सी भी खैर थी अल्लाह ताला उसको हक पे जरूर ले आएगा। फिर आखिरी आयत इस पारे के एतबार से आयत नंबर 45 है सूरत यूसुफ की, वकाल अल्लज़ी नजा मिन्हुमा वद्दकर बाद उम्मतिन अना उनब्बियुकुम बितावीलिही फारसिलून। अब वो शख्स जो दोनों कैदियों में से रहाई पा गया था और जिसे मुद्दत के बाद वो बात याद आ गई, बोल उठा कि मैं आपको इसकी ताबीर लाकर बताता हूँ, मुझे जेल खाने में जाने की इजाजत दे दीजिए। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि लफ्ज उम्मतिन मुद्दत के मानों में एक टाइम पीरियड, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक ही लफ्ज डिफरेंट फॉर्म्स में आता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें इन सारी चीजों पर गौर व फिक्र की तौफीक अता फरमाए।